होशे अध्याय 13, होशे अध्याय 13 पद 1। जब एप्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे, जब एप्रेम को घमंड नहीं था और वे अपनी दुर्बलताओं को जानते थे। होशे अध्याय 13 पद 1 में आगे लिखा है, और वो इस्राएल में बड़ा था, परंतु जब वो बाल के कारण दोषी हो गया तब वो मर गया। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन अध्याय 14 पद 34, जाति की बढ़ती धर्म से ही होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। लूका में लिखा है, लूका अध्याय 14 पद 11, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। एप्रेम के साथ ये सच सिद्ध हुआ, जब वे कांपते थे तब परमेश्वर ने उन्हें उभारा, और जब उन्होंने मूर्ति पूजा की तब परमेश्वर अप्रसन्न हुआ और उनका विनाश हुआ। होशे अध्याय 13 पद 2, और अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी डालकर ऐसी मूर्तें बनाई है जो कारीगरों ही से बनी। उन्हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नरमेत करें वे बछड़ों को छूमे। वे चांदी के छोटे छोटे बछड़े बनाकर अपने गले में चेन डालकर पहनते थे और उन्हें चूमना शुभ माना जाता था। जब वे किसी भले काम की कामना करते थे तब वे उस छोटी सी बछड़े की मूर्ति को चूमते थे। ये परमेश्वर की प्रजा का काम था। होशे अध्याय 13 पद 3, इस कारण वे भोर के मेघ, तड़के सूख जाने वाली ओस, कलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। होशे रसात्मक भाषण और लेखन कार्य में प्रवीण था, अतः वो सुबह के बादल की उपमा देता है कि वे उसके सदृश बहाए गए थे। वे सुबह की ओस के समान भाप बनकर उड़ गए थे, या हवा द्वारा उड़ाई गई भूसे के तुल्य उनका आचरण था। वे उस धुएं के समान थे जो चिमनी से निकलने के बाद धीरे धीरे आकाश में विलोप हो जाता है। होशे अध्याय 13 पद 4, मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, तो मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। परमेश्वर ने उनके साथ ये वाचा बांधी थी, जिसके निभाने के द्वारा वे प्रतिज्ञा के देश में स्थापित रहेंगे और आशीषें पाएंगे। वे परमेश्वर की उपासना करेंगे, अन्य किसी देवता की नहीं, परंतु उन्होंने वो वाचा तोड़ दी थी। परमेश्वर ने कहा, होशे अध्याय 13 पद 5, मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, जब तुम उस क्षेत्र में थे जहां तुम्हें मुझ पर आश्रित रहना ही था, तब से मैं तुम्हें जानता हूं। तुम सदैव मुझे पुकारते रहते थे, वे समस्याओं से घिरे हुए थे और यहोवा को पुकारते रहते थे। होशे अध्याय 13 पद 6, परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे, जब वे प्रतिज्ञा के देश में बस गए, तब वे तृप्त हो गए, क्योंकि यह देश उपजाऊ देश था, वे समृद्ध हो गए थे। होशे अध्याय 13 पद 6 में आगे लिखा है, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। मनुष्यों के साथ ये एक आम घटना है, वे परेशानी के समय, आवश्यकता के समय, गरीबी के समय परमेश्वर को खोजते हैं, और जब उन्हें समृद्धि प्राप्त हो जाती है तब वे परमेश्वर को भूल जाते हैं, वे अपनी संपदा में व्यस्त हो जाते हैं, वे जीवन के वास्तविक दृष्टिकोण को भूलकर कुकृत्यों में व्यस्त हो जाते हैं। होशे अध्याय 13 पद 7 और 8। सो मैं उनके लिए सिम सा बना हूं, मैं चीते की नाई उनके मार्ग में घात लगाए रहूंगा, मैं बच्चे छिनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिम की नाई उनको वहीं खा डालूंगा जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। यहां परमेश्वर इन पशुओं का वर्णन कर रहा है, परंतु दानियल की पुस्तक में बाबुल को शेर कहा गया और मादी फारसी राज्य को रीच कहा गया है। चीता यूनान को और रोमी साम्राज्य को वन पशु कहा गया है। अतः परमेश्वर एप्रेम को दंड देने के लिए इन दैत्यों का प्रयोग करेगा। इसराइल का सबसे पहले अशूरों ने नष्ट किया, तदोपरांत बाबुल, मादी फारसी, यूनानी तथा अंत में रोमी साम्राज्य द्वारा दानियल द्वारा उल्लेखित पशुओं का वर्णन होशे ने भी किया कि परमेश्वर उन साम्राज्यों द्वारा एप्रेम को दंड देगा क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हो गए हैं। होशे अध्याय 13 पद 9। परमेश्वर ने कहा, हे इसराइल, तेरे विनाश का कारण ये है। उनके अनुसार उनके दांत खट्टे होने का कारण था कि उनके बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए थे, परंतु यहोवा कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने स्वयं ही अपने आप का नाश किया है, तुमने खट्टे अंगूर खाए हैं, इसलिए तुम्हारे दांत खट्टे हैं। होशे अध्याय 13 पद 9 में आगे लिखा है, तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। यद्यपि मनुष्य अपना विनाश स्वयं करता है, परमेश्वर सदैव उसकी सहायता के लिए खड़ा रहता है। होशे अध्याय 13 पद 10। तेरा राजा अपना जीवन मुझे दे दे और मेरी प्रभुता के अधीन हो जा। होशे अध्याय 13 पद 10 में आगे लिखा है, अब तेरा राजा कहां रहा कि तेरे सब नगरों में तुझे बचाए, तुझे कोई बचा नहीं सकता। अपना जीवन परमेश्वर को दे दे और वो तुझे जो बनाना चाहे उसे बनाने दे। होशे अध्याय 13 पद 10 से लेकर 13 तक। और तेरे न्यायी कहां रहे जिनके विषय में तूने कहा था कि मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे, मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जल जलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। ए प्रेम का अधर्म घटा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है, उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, परंतु वो निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म के समय ठीक से नहीं आता। इब्रानी भाषा में 13वें पद का मूल अर्थ है जन्म लेने की अवस्था में भी जन्म नहीं लेता। होशे अध्याय 13 पद 14। मैं उसको अधोलोक के वश में से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। दूसरे शब्दों में इसराइल कब्र में जा रहा था और वहां गया भी। आपको ध्यान होगा कि परमेश्वर एहेस्केल को हड्डियों से भरी एक तराई में ले गया और पूछा, क्या ये हड्डी पुनः जीवित हो सकती है? एहेस्केल ने कहा, परमेश्वर तू ही जानता है। एहेस्केल के देखते देखते वे हड्डियां कंकाल बनकर खड़ी हो गई और उन पर मांस चढ़ गया। तब परमेश्वर का वचन एहेस्केल के पास पहुंचा, इसी प्रकार मैं अपने लोगों को जो अन्य जातियों में तितर बितर है उनके देश में एकत्रित करूंगा और उन पर मांस चढ़ाऊंगा तथा वे उस देश में वास करेंगे। यहां भी परमेश्वर कहता है, मैं मृत्यु से उनको छुटकारा दूंगा। इसराइल 2000 वर्ष तक परदेशी रहा और पूरे विश्व में तितर बितर रहा। उसकी राष्ट्रीय मृत्यु हो गई थी, परंतु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह उन्हें मृत्यु से छुटकारा देगा। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और इसराइल आज विश्व के नक्शे पर एक राज्य है। ये एक बार फिर अपने वचन के प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता का सत्य एवं गवाही है। जब हम इसराइल की यात्रा पर थे, तब एक युवा लड़की जो इसराइल की सेना में थी हमारे साथ हो ली। मेरी पत्नी ने उसे बातचीत करते हुए कहा, क्या आप परमेश्वर में विश्वास रखती है? उसने कहा, नहीं। मेरी पत्नी ने फिर पूछा, क्या आपने कभी बाइबल पढ़ी है? उसने कहा, हमें पढ़ना पड़ती है क्योंकि हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में ये अनिवार्य है। मेरी पत्नी ने कहा, आप बाइबल के बारे में क्या सोचती है? उसने कहा, ये केवल मनुष्य की काल्पनिक कहानियां हैं, क्योंकि उन्हें किसी न किसी में विश्वास तो रखना ही है। मैंने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों सोचती है कि ये देश आपका है? उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है। मैंने कहा, एक मिनट रुकिए, आप परमेश्वर में विश्वास नहीं रखती हैं। वे सब कहानियां हैं जिन्हें मनुष्य ने गाढ़ा कि उनसे विश्वास का आधार मिले। वो सोचने लगी। तब उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि इस देश में आपकी उपस्थिति के कारण मैं परमेश्वर में विश्वास रखती हूं? मैंने उससे कहा, आपकी इस देश में उपस्थित इस बात का प्रमाण है कि ये कहानियां मात्र नहीं है, ये वास्तव में परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। और मैंने आगे कहा, नहीं तो ना आप यहां होती और ना ही आपको यहां रहने का अधिकार प्राप्त होता, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, इसलिए आप इस देश में स्वतंत्र नागरिक है और आपका इस देश का नागरिक होना ही प्रमाण है कि परमेश्वर है। परमेश्वर यहां एक प्रतिज्ञा देता है। होशे अध्याय 13:14 में आगे लिखा है, मैं उसको अधोलोक के वश में से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मरने की शक्ति कहां रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहां रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। जब पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को प्रथम पत्र लिख रहा था, तब उसके अंत में अध्याय 15 में उसके मन में होशे का यही भाग रहा होगा। पहला कोरिन्थियों अध्याय 15:55 से लेकर 57, हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अतः मृत्यु का डंक मसीह यीशु के द्वारा तोड़ दिया गया है और निस्संदेही वो परमेश्वर द्वारा मृत्यु और अधोलोक के विनाश के बारे में कह रहा है जो मनुष्य का अंतिम भयानक बैरी थी। होशे अध्याय 13:15-16, चाहे वो अपने भाइयों से अधिक फूले फले तो भी पूर्वाई उस पर चलेगी और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी और उसका कुंड सूखेगा और उसका सोता निर्जल हो जाएगा। उसकी रखी हुई सब मन भावनी वस्तुएं वो लूट ले जाएगा। समरिया दोषी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी। भयानक दंड की भविष्यवाणी जो पूरी होकर रहेगी, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये उनकी अपनी करनी का फल है क्योंकि वे परमेश्वर की ओर आने को तैयार नहीं थे। मनुष्य पर आने वाले संकट के लिए परमेश्वर को दोष ना दिया जाए। परमेश्वर तो आप पर आने वाले संकटों को रोकने का पूरा प्रयास करता है और आपको इसी कारण वो अपनी ओर करता है। वो वहां खड़ा होकर कहता है, ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। मान लीजिए कि आपका बेटा बड़ा ही उद्दंड है और वो सड़क पर खेलने की जिद करता है। आप जब घर आते हैं तब उसे सड़क पर खेलता पाते हैं। आप उसे समझाते हैं, सड़क पर मत खेलो, सड़क पर खेलना खतरनाक है। परंतु आप फिर से उसे सड़क पर खेलते पाते हैं। आप उसे सड़क पर खेलने से रोकने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु वो नहीं सुनता। और होता यह है कि एक दिन उसकी कार से दुर्घटना हो जाती है। अब वो कहता है, पापा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप कहते हैं, मैंने तो तुझे इसी दुर्घटना से बचाने का प्रयास किया था। मैंने तुझे चेतावनी भी दी थी कि ऐसे खेलने से दुर्घटना हो सकती है। मैंने तुझे इस काम के लिए दंड भी दिया, तेरी ताड़ना भी की कि तू सुधर जाए, परंतु तू नहीं माना। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर आपको चेतावनी देता है, देख इस राह पर विनाश है, हानि है, इस राह पर तुझे चोट लग जाएगी। परमेश्वर चेतावनी देता है, वो ताड़ना करता है, वो यथासंभव प्रयास करता है, परंतु आप अपने हट में वही करते हैं जो परमेश्वर मना करता है। और जब आपको चोट पहुंचती है तब कहते हैं, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। यदि वो प्रेमी परमेश्वर है तो उसने ऐसा होने ही क्यों दिया? देखिए, इसके उत्तरदायी आप ही हैं। आप ही परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चले। परमेश्वर ने तो आपको इससे सुरक्षित रखने का भरसक प्रयास किया, परंतु आपने सुनने और मानने से इनकार कर दिया था। जैसा कि भविष्यद्वक्ता कहता है, परमेश्वर हमसे उदाहरणों के द्वारा बात करता है। एक बार की बात है, हम किसी स्थान पर सभा कर रहे थे। उस रात हमने बहुत बड़ी उत्सव अग्नि जलाई। उस आग से आकर्षित होकर कीट उसमें आकर गिरने लगे। बच्चों ने देखा कि वे आग में गिरकर मर रहे हैं, अतः उन्होंने उनके साथ बल्लेबाजी करके उन्हें रोकना आरंभ कर दिया। परंतु जब वे गिरकर फिर चेतन होते, वे उड़कर आग में आ जाते और मर जाते। जब हमारी कक्षा आरंभ हुई तब मैंने उनसे कहा, अभी शाम को जब आग जलाई गई थी, आप लोग उन कीटों को आग में जलकर मरने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। आपने यथासंभव प्रयास किया। क्या आपने परमेश्वर को आपसे कुछ कहते सुना? वो कह रहा था कि वो भी आपको आग में गिरकर जल जाने से बचाने का प्रयास कर रहा है। उसने पूरा प्रयास किया है, परंतु यदि आप लोग सुनेंगे नहीं तो अपना विनाश कर लेंगे। ये बड़ा ही प्रभावी संदेश था जो परमेश्वर ने उन्हें उपमा द्वारा दिया। परमेश्वर हमसे बात करने में कई बार उपमाओं का प्रयोग करता है।